वयं तु ना वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। बहुत सुंदर है। वो कह रहे हैं इसका कनेक्शन क्या है। मान लीजिए सूत गोस्वामी कहते कि भाई आप एक प्रश्न करते, दो प्रश्न करते, आप तो प्रश्नों की जड़ी लगा दे रहे हैं, प्रश्न रोक ही रह रहे हैं, तो कहीं उन लोगों को बुरा न लग जाए, अर्थात सूत गोस्वामी जी को बुरा न लग जाए कि इतने प्रश्न क्यों कर रहे हो। तो यह अपनी उत्सुकता को दिखा रहे हैं कि हम इतने प्रश्न क्यों कर रहे हैं। लिंक समझ में आ रहा है आपको? लिंक बहुत मजेदार है कि सूत गोस्वामी जी गुस्सा हो जाते हैं, अरे इतने प्रश्न क्यों कर रहे हो भाई। तो अपनी उत्सुकता को दर्शाने के लिए श्लोक को है बोल रहे हैं। तब देखिए कह रहे हैं, वयम तु ना वितृप्यामा, वयम मतलब हम, तू मतलब लेकिन, न वितृप्यामा, हम तो और लोग तृप्त हो सकते हैं लेकिन वयम तू न, हम नहीं तृप्त हो। समझ रहे हैं? तू कर समझ रहे हैं, वयम तू ना वितृप्यामा मतलब हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। अन्य लोग हो सकता है भाई वो कह रहे नहीं बहुत हो गया कथा, आप चलो बंद करो, प्रसाद महाप्रसादे बोलो, नहीं हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। इस कारण से हम आपसे बार बार प्रश्न कर रहे हैं। किससे तृप्त नहीं हो रहे हो? तो कह रहे हैं उत्तम श्लोक विक्रमे। इस पे बड़ी सुंदर टीका आप भक्तों ने करी है। कह रहे हैं उत्तम श्लोक मतलब जिनके विक्रम, जिनके कार्यों को सुनकर के जीव तमा से ऊपर उठ जाता है। और एक और अर्थ है कि सनक आदि ऋषि जो तमोगुण से ऊपर उठे हुए हैं, वह तमोगुण मतलब अज्ञान से ऊपर उठे हैं, वह भी भगवान कृष्ण के विक्रम को सुनना चाहते हैं। यह बड़ा सुंदर सुंदर अर्थ है। फिर कहते हैं यश शुण्वताम रसज्ञानाम, जो रसज्ञ है कथा को, कथा का जो रस को समझता है, वह स्वादु स्वादु पदे पदे, जब वो सुनता है तो उसको हर पद पे हर क्षण सुख प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि हम इसलिए प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि भगवान उत्तम श्लोक के चरित्रों को सुनने से हमें तृप्ति नहीं हो रही। अब एक पॉइंट ये भी है कि जो वाकई भगवान के चरित्रों को सुनने से तृप्त हो गया है, उसका कारण ये है कि वह रसज्ञ नहीं, उसके रस को नहीं जानता है। उसको हम अभी चर्चा करेंगे। बड़ी सुंदर टीका है तो आप ध्यान पर सुनिएगा। और तू का अर्थ हमने बता दिया। तू का अर्थ ये था कि हम लोगों को अन्य लोग तो तृप्त हो सकते हैं लेकिन हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो इस वयम आदि श्लोक में वह भगवान के चरित्रों को सुनने के औत्सुक्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। औत्सुक्य समझे, उत्सुकता, उत्सुकता आग्रह। उसके बाद अब उनकी टीका सुनिए, बड़ी सुंदर। कहते हैं योग यागादिषु तृप्तास्मः, योग करने और यज्ञ करने से तो हम तृप्त हो चुके हैं लेकिन कथा से तृप्त नहीं हुए। लेकिन समझ गए ना तू? तो बोले योग, हम योग कर रहे थे, यज्ञ दादी कर रहे थे, वह तो हमें तृप्त कर दिया, हम तो बंद कर चुके हैं उसको, लेकिन कथा से तृप्त नहीं हुए इसलिए आप कथा सुनाई। ठीक, योग मतलब, योग मतलब और जो अष्टांग योग और कोई भी योग हो, भक्ति योग की बात नहीं हो रही, और योग इत्यादि जो कुछ भी था वह अगर उसको करके हम बोर हो गए, उसमें कोई तृप्ति नहीं हुआ, उसमें कोई आनंद नहीं आ रहा, आप कथा सुनाइए, कथा में हम तृप्त हो रहे हैं। देखिए कथा में सुख मिलने का कारण है हृदय अगर शुद्ध होगा तो। हृदय शुद्ध नहीं है तो भी सुने आगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। अगर कथा में आग्रह हो रहा है तो उसे समझ लेना चाहिए कि भगवत प्रीति बढ़ रही है और हृदय में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कट रहा है, तब कथा समझ में आती है और कथा अच्छी लगती है, कथा सुनने के बारे में और आग्रह होता है। ये प्रकट प्रभाव अपने हृदय में हम देख सकते हैं। और कोई कहे कि अभी संडे, एक संडे मिला था, कोई पिक्चर देखता, मैं कहाँ आ गए कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए, तो अभी फिर रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है हृदय में, ठीक है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों में है। अगर मैं प्राय इस बात को बोला करता हूं कि भाई प्रजल्प करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए, एक व्यक्ति, दुनिया की बात करने के लिए खाली एक ही व्यक्ति तो काफी होता है, कृष्ण की बात करने के लिए कितने लोग चाहिए, 100 लोग होने चाहिए तब तुम बात करेंगे, ना एक ही व्यक्ति मिल जाए तो उसे चालू हो जाइए भगवान के बारे में बात करना, वो किताब खोले आप किताब खोलिए चर्चा का चालू हो जाए। तो खैर बात आ रही है कि योग मतलब अन्य क्रियाओं से तो हम तृप्त हो गए लेकिन कथा से हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। आप देखें एक एक शब्द का कितना सुंदर सुंदर अर्थ है। फिर उसके बाद उत्तम श्लोक पे बोलते हैं उदगच्छति तमो यस्मात् स उत्तम उत्तमस्तथा भूतः श्लोको यशो यस्य तस्य विक्रमे तु विशेषेण न तृप्यामा अलमति न मन्यमाहे। कह रहे हैं कि भगवान का यश ऐसा है, उत्तम श्लोक पे बोल रहे हैं भगवान का यश ऐसा है कि जो उसको सुनता है उसका तम उसका अंधकार दूर हो जाता है, उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है, वह समझ पाता है कि वह कौन है, वह क्या उसे क्या करना चाहिए, जीवन का कर्तव्य क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हम ये शरीर हैं तो केवल शरीर की आवश्यकताओं को और शरीर के संबंधों को निर्वाह करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे। मैं आज प्रभु जी को बोल रहा था, जब करते समय मन में एक बहुत सुंदर भाव आया कि ये हमारे मामा जी आज हैं और मामा जी ने हमको बताया था कि वाटर एट 99 डिग्री सेल्सियस डज नॉट नो इफ इट रेजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इट बिकम्स स्टीम। बताए थे ना आप मेरे को। तो मानव जीवन प्राप्त करने के बाद कृष्ण भावना आंदोलन प्राप्त करने के बाद पहले तो मैं सिद्धांत बोला था कि पानी है आप उसे गर्म कर रहे हो 99 डिग्री पे पहुंच गया है, अगर वो 1 डिग्री और बन जाएगा तो बढ़ जाएगा तो स्टीम बन जाएगा। वो 1 डिग्री प्राप्त करने के लिए बहुत एनर्जी भी लगती है, जिसने साइंस पढ़ा हुआ है वो जानता है कि स्टीम बनने के लिए टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा लेकिन स्टीम बनता चला जाएगा व्यक्ति सॉरी पानी, और उसके लिए हीट लगती है नीचे से, बेसिकली तपस्या लगती है। हम सब लोगों को मानव जीवन प्राप्त है, भक्तों का संग प्राप्त है, भागवत प्राप्त है, हरि नाम प्राप्त है, थोड़ी तपस्या कर लें और वो तपस्या है हरे कृष्ण मंत्र का 16 माला का जप और 4 नियम का पालन, थोड़ी तपस्या कर लें तो हम इसी जीवन में भगवान के पार्षद बन सकते हैं। लेकिन ये हमको पता नहीं है, इसलिए खूब सुनना चाहिए। ये बहुत शक्तिशाली है भगवान का नाम, अनंत रूप से शक्तिशाली है। करते रहेंगे तो देखेंगे एक दिन भगवत भगवान के पार्षद बन गए, थोड़ा सा भी प्रयास करें तो। तो खैर पॉइंट ये है कि भगवान के यश को जो सुनता है उसका तमोगुण उसका अंधकार नष्ट होता है, वह समझ पाता है कि जीवन में उसे क्या करना चाहिए। और वह कह रहे हैं कि एक और उनका ये स्पेशल गुण है कि भगवान के चरित्रों को सुनकर की तृप्ति नहीं होती है। आप इसी श्लोक को फिर घर जाकर पढ़ेंगे, उसको किसी को गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ कथा आप कुछ बोलेंगे दुनिया की बातें बोलेंगे कुछ समय के लिए हटाओ क्या करना है। कभी कभी हम निंदा भी करते हैं, आधा घंटा 15-20 मिनट निंदा कर ली उसके बाद छोड़ो हमें क्या करना, शुरुआत में भले वो बड़ी अच्छी लगती है लेकिन बाद में अरे हटाओ उसे क्या करना है, और जब कुछ नहीं करना था तो निंदा शुरू क्यों करी। ये जगत की वार्ता का स्पेशल गुण है, गुण दुर्गुण है कह लीजिए, और जिसको समझ गया वह इन वार्ताओं में नहीं लगेगा। ठीक है, तो तृप्त ना होने का कारण क्या है, उसका कारण क्या है, यद विक्रमम शुण्वताम, जो व्यक्ति रसज्ञ है वह भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुन करके तृप्त हो ही नहीं सकता है। और उस पर वो कहते हैं अन्य तृप्यन्तु नाम वयम तु नेति तु शब्द अनवाया, कह रहे हैं कि अन्य लोग जो रसज्ञ नहीं है जो भगवान की कथा को नहीं जानते हैं वह कह सकते हैं कि हमें बहुत हो गया हमें नहीं सुनना, हम तो समझ रहे हैं। तो वह प्रेरित कर रहे हैं सुखदेव को सुत गोस्वामी को कि आप कथा को बोलिए। एक बार अभी मैं बाली में था तो ऐसे ही हमने 3-4 भक्तों को बैठाया, 2-3 ब्रह्मचारी थे कुछ और भक्त थे, तो 1.5 घंटा हो गया तो मैंने कहा क्या करें रुक जाएं, नहीं नहीं एक श्लोक और बोल दीजिए। तो ये दिखाता है कि उनको कथा समझ में आ रही है और उनको आग्रह है सुनने का, तो मैं ठीक है बोल देते हैं। जिस दिन मैं वहां से निकल रहा था तो हम लोग ने कहा भाई आप लोग भूखे हैं सुबह क्लास है, मैं चाह रहा था कि कुछ लोगों को पूरा कर दें तो क्लास खींच दें थोड़ा 2 घंटा का, हाँ हाँ करिए कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि अब उनको अच्छा लग रहा है तो फिर वह सुनने का आग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं, हाँ और दीजिए। जैसे अब उसको कैसे होता है मैं समझाता हूँ। वो कह रहे हैं कि 3 प्रकार से अलम बुद्धि होती है। अलम मतलब बहुत हो गया और नहीं चाहिए, सफिशियंट और नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं उदारादि भरने नवा, रस अज्ञानी नवा, स्वादु विशेष अभावाद्वा। कह रहे हैं जैसे व्यक्ति खाना खाता है, अभी हम लोग प्रसाद दे रहे थे तो 3 प्रकार से बोलता है कि बहुत हो गया। 1, पेट भर गया, खाने की तो बहुत इच्छा है उसकी, लेकिन पेट भर गया। आज सुबह बहुत अच्छा फीस था और मैंने प्रसाद लिया और खीर भी थी मेरे सामने, खीर नहीं खा पाए क्योंकि पेट भर गया, तो आलम बुद्धि हो गई। अरे भाई अब मन तो बहुत है, कभी कभी लोग सर्व करते हैं क्या चाहिए, और हमने कहा एक पेट और दे दीजिए अलग से तो कहने का अर्थ यह है कि मन में तो तृप्ति नहीं हो रही है लेकिन पेट भर गया तो कैसे खाएंगे। ये सबसे बहुत सुंदर अर्थ लिया उन्होंने, ने कहा कि पेट भर गया तो आदमी कहेगा लो नहीं खाएगा, नहीं खा सकते। अच्छा मान लीजिए पेट तो नहीं भरा है लेकिन कोई खाना की वस्तु अच्छी नहीं है, जैसे मैं वहां पे प्रसाद ले रहा था एकादशी वाले दिन क्लास दिया, तो पता नहीं केले को बॉईल करके लेके आ गए वो अजीब सा कुछ तो था, छिलके सहित। खाइए, हमने एक बार खाया, हमने कहा नहीं बाकी आप दूसरे भक्त खा लो, वो लोग बड़े मजे से खा रहे हैं। तो अब हम लोग का भारतीयों का एक विशेष टेस्ट है, तो उसमें अब वो टेस्ट नहीं आएगा तो ठीक है, ठीक है हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद कह रहे हैं स्वादु विशेष भावत, मतलब भाई उसको एक हो गया रसज्ञ, मतलब उसको जानते ही नहीं, कथा समझ में नहीं आ रही तो क्या करेगा बताइए, नहीं सुनेगा। और दूसरा है कि स्वादु विशेष, मतलब अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं। मान लीजिए खीर बनी, अब उसमें थोड़ी चीनी कम है, हाँ ठीक है एक कटोरी खा लेंगे दूसरी नहीं खाएंगे, तो है लेकिन अच्छी नहीं है। तो तीन बातें, तीन काम से अलन बुद्धि हो जाती है, एक पेट भर गया, दूसरा उस खाने की वस्तु का रस पता नहीं है, और तीसरा अच्छी है लेकिन उतना मतलब कोई विशेष नहीं कि हम उसको बहुत ज़्यादा उसमें आग्रह करें। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब उसको भगवान की कथा से हम कंपेयर करने वाले, तो कह रहे हैं भाई जो कान हैं वह तो आकाश तत्व से बने हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कान भर गया, समझ में आया। जो ये पेट वाला बात बोल रहे हैं, पेट तो भर जाता है तो क्या कान भी भर जाते हैं हमारे, कान तो आकाश तत्व से बने हैं। अब डालते जाइए कथा, पूरा दिन कथा बोलते जाइए। इसलिए हम लोगों को जल्दी से जल्दी हरि कथा में रुचि प्राप्त करनी चाहिए। भगवान के प्रसाद में तो है ही रुचि पहले से, आज तक कोई सेमिनार बना कि भगवान के कथा प्रधान के प्रसाद में रुचि कैसे प्राप्त करें, वह तो स्वाभाविक रुचि है, खाने पीने में तो कोई दिक्कत नहीं, और भगवान का प्रसाद मिल जाता तो बड़े खुश हो जाते हैं, तो ये प्रारंभिक अवस्था में ठीक है। लेकिन मूलतः हमारी रुचि कहाँ बढ़नी चाहिए, कथा में। और पता होगा क्या, जब कथा में रुचि बढ़ने लग जाएगी तो खाना भी एक बीच में डिस्टर्बेंस लगता है, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल जब भराते हैं तो ना कहते हैं अब पेट्रोल पंप आ गया आप थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा पानी पिए लेटेंगे, और ऐसा नहीं करते, जल्दी जल्दी पेट्रोल भरा करके आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। उसी प्रकार से जब कथा में रुचि बढ़ने लगती है तो ये जल और खाना, जहां तक कि जल भी व्यवधान लगता है। हम अब परीक्षित महाराज के बारे में सुनते हैं कि सूत को सुखदेव गोस्वामी को संदेह हो जाता है, ये 6 दिन से पिए नहीं है, कुछ खाए नहीं है, सोए नहीं है, सुन पा रहे हैं तो खुद बोल रहे हैं अपना आग्रह प्रस्तुत करते हुए कि आप ऐसा मत सोचिए कि पानी पीने से, पानी नहीं पिया हूं, खाया नहीं हूं तो कोई दिक्कत है, आप कथा सुनाते रहिए। ये हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, ये तो बहुत उच्चतर प्रेम की अवस्था है। लेकिन जैसे जैसे आपको कथा में, हम सबको कथा में रुचि मिलेगी तो जीवन को सिंप्लीफाई करते रहेंगे। यह बातें हम दूसरे अध्याय में समझेंगे, अपने जीवन को सादा रखेंगे ताकि हमारे पास कथा के लिए समय अधिक हो, भगवान के नाम जप के लिए अधिक समय हो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं रसाज्ञा के बारे में बोल रहे हैं कि देखिए, बोले हैं पशुवृत्त तृप्ति निराकृत। जैसे आपने सुना है भैंस के आगे भीन बजाए, भैंस खड़ी पकड़ाए, सुना है ना। अब आप भागवत कथा किसी के सामने बोल रहे हैं जो उस कथा को समझता ही नहीं है, तो उसे वो बोले क्या बोल रहे हैं ये, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, ये कब बंद होगा है कि नहीं। एक और उदाहरण दिया जाता है, आप में से कितने लोगों को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है, शास्त्रीय संगीत नहीं है। अब देखिए लोग, और आप कभी आप देखे हैं पहले डीडी क्या नाम से टीवी पे क्या बोलते थे, डीडी टीवी क्या बोलते हैं, डीडी वन पे कभी कभी वो लोग शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम लगाते थे, हम लोग तुरंत बंद कर देते थे। लेकिन आप देखिए कि वहां पे बड़ा अच्छा उदाहरण है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहां लोग बैठे हैं और घंटों बैठे हैं। अब देखिए जैसे ये मृदंग है, अब मृदंग का लेवल कितना भी हो सकता है, तो जो व्यक्ति जैसे मैं को अनुभव है, तब तो कहीं कीर्तन में मृदंग बजता है तो बाकी भक्त लोग कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करते, कुछ गलत बज रहा है सही बज रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सेंस डेवलप हो चुका है तो जरा सी भी गलत होता है तो मैं ये क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों बजा रहे हो? आप लोगों को भी लगता है कभी मृदंग गलत बजता है? कभी नहीं लगता है तो सब, और अंतर महसूस होता है कौन अच्छा बजा रहा है कौन बुरा बजा रहा है, ये भी नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम लोग समझ पाते हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा उसकी जानकारी है, रसज्ञ समझते हैं ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो रसज्ञ व्यक्ति है भगवान के कथा के रस को समझता है, उसके शब्दों को अर्थ को समझता है, वह तो उसको पकड़ लेगा, उसको तो बड़ा अच्छा लगेगा, तो और सुना वो तो झूमने लगेगा, अरे वाह क्या से शास्त्रीय संगीत हो रहा है, वाह वाह क्या क्या ताल ले रहा है क्या ले रहा है। या जैसे कभी देखिए भरतनाट्यम अब भरतनाट्यम में तो हमें लगा क्या जोकर बनकर के आए हैं, होता है ना ऐसे नाच रहे हैं, क्या भाव भंगिमा प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसकी ट्रेनिंग है वाह वाह क्या नाटक प्रस्तुत किया बड़ा सुंदर है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को अनुभव होगा, अब मान लीजिए कोई एकदम से नया आ जाए और भागवत की कथा चल रही है, स्पेशली अब सिद्धांत बोलने चालू कर दें तो बहुत उस टाइम तो सब लोग झूमने नहीं लगते हैं, सोने लगते हैं, भाई क्या बात हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ वो बोल रहे हैं कि हम तो रसज्ञ हैं, मतलब जो शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं हम तो रसज्ञ हैं, हमें तो रस मिल रहा है, आप सुनाते जाइए, ठीक है ओके। तो ये दूसरा कारण है, रस कथा का पता है, इस कारण से भी उनको टेस्ट मिल रहा है, इसलिए कह रहे सुनाइए। अब वो कह रहे हैं इक्षु भक्षण वद सांतर भावेन तृप्तिम निराकृत करोति। तो इसके दो अर्थ हैं, एक ये है कि मान लीजिए कोई गन्ने का जूस पी रहा हो और कोई उसको अमृत दे दे, मतलब कुछ चीज से रस मिल रहा है उसे श्रेष्ठतम वस्तु श्रेष्ठतर वस्तु दे दे तो छोड़ देगा। फीस्ट में भी होता है ना कि खीर है तो ये स्वीट छोड़ देंगे, मान लीजिए रसगुल्ला है तो मालपुआ छोड़ देगा क्योंकि मालपुआ से श्रेष्ठ रसगुल्ले का टेस्ट होता है। तो भगवान की कथा से श्रेष्ठ रस तो कुछ है ही नहीं। अच्छा दूसरा अर्थ एक ये भी है कि गन्ने का जूस हम जब पीते हैं तो कुछ समय के बाद गन्ने का जूस समाप्त हो जाता है, होता है कि नहीं, उसके बाद तो सूखा हो जाता है। लेकिन ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ लेते हैं कि गन्ने का जूस आप सबको अनुभव है, गन्ना आप चबा रहे हैं और जूस निकल रहा है, जूस निकल रहा है, जूस निकल रहा है, उसके बाद बंद। लेकिन भगवान की कथा ऐसी नहीं है, कह रहे हैं पदे पदे प्रतिक्षणम स्वादु तोपि स्वादु, हर क्षण हम जितनी बार कथा सुन रहे हैं आपके मुख से हमको रस प्राप्त हो रहा है। और प्रभुपाद इस बात को समझाएंगे अपने तात्पर्य में, ऐसा नहीं है कि आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आज पढ़ लिए आप छोड़ हटाओ सब पता है, ऐसा नहीं होता। जितनी बार आप भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतनी बार आपको कुछ उसमें फ्रेश लगेगा। कारण क्या है, यह सब भगवान की चिद शक्ति का प्राकट्यकरण है, ये भौतिक शब्द नहीं है। देखने में लग रहा है कि भाई ये तो इंक से लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन यह सब चिद स्पिरिचुअल है। तो हमने क्या सीखा, तीन कारण से तृप्ति नहीं हो रही, एक कि कान जो है वह भरते नहीं है, दूसरा हम कथा के रस को जानते हैं, और तीसरा है कि कथा से श्रेष्ठ कोई रस है नहीं ऐसा। और एक और भी कारण है कि कथा का रस कम नहीं होता है, जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे कथा में रस बढ़ता जाता है। आचार्यों ने समझाया कि जैसे जैसे ज्वर कम हो जाता है वैसे वैसे भूख हमारी वापस मिल जाती है। तो भले ही शुरुआत में रस ना हो लेकिन कथा सुनता रहेगा औषधि के रूप में तो फिर उसको कथा में रस मिलने लग जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, प्रभुपाद जी के अनुवाद को हम देख लेते हैं। हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशगान स्त्रोतों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है, ये उत्तम श्लोक को समझा रहे हैं। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का सदन करते हैं। प्रभुपाद अच्छी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति ने भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कर लिया है वह भगवान की कथा को सुनने से कभी तृप्त नहीं हो सकता है। रसज्ञ का मतलब ही है कि रसज्ञा नाम मतलब जो रस को जानते हैं, और हमने बहुत सुंदर अर्थ प्रपात कर रहे हैं, हमने पढ़ा था 1.1.3 में रसो वैसह रसम लब्ध्वा ही आनंदी भवती, रस कौन है कृष्ण, रसज्ञ मतलब जो कृष्ण को जानते हैं। ऐसा हम नहीं सोचना चाहिए कि भागवत हम तभी पढ़ रहे हैं जब तक हमारा भगवत प्रेम ना प्राप्त हो जाए। आपको याद है हमने बताया था कि जब तक बेहोश ना हो जाओ भागवत सुनते सुनते, अगर भगवत प्रेम ना प्राप्त हो जाए तब तक सुनते रहिए, उसके बाद तो हम छोड़ ही नहीं सकेंगे। जैसे मछली पानी को नहीं छोड़ पाती है, तात्पर्य में बलदेव विद्याभूषण जी समझाते हैं, जैसे मछली पानी को नहीं छोड़ सकती कोई, अरे भाई आप बोर नहीं हो रहे हो, महाराज एक बार बोल लेते, कहे अरे इतनी कथा कर रहे हो आप लोग बोर नहीं होते, तो महाराज बोले आप इतने सालों से सांस ले रहे हैं आप बोर नहीं होते, बहुत सांस ले लिया भैया और सांस नहीं लेना, सांस लेने से कोई बोर होता है, बोले आप जमीन पर चल रहे हो तो बोर होते हो। अभी मेरे मामा जी बात कर रहे थे, कह रहे थे मैं इतना हवा जात में चला हूं कि बोर हो गया हूं, है कि नहीं, यही बोल रहे थे ना, और ये सत्य बात है, मैं तो बहुत कम चला हूं तब भी बोर हो गया, क्योंकि प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं क्योंकि हम तो स्थल के आदमी हैं, थल के आदमी हैं, थल के जीव हैं, तो आकाश में रहना बिल्कुल बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग लगता है, केवल यहीं से अच्छा लगता है, वहां बहुत बोरिंग लगता है। दो घंटे में ट्रेन का सफर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दो घंटे का जो हवाई जहाज का सफर होता है बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि हम वहां के व्यक्ति नहीं है। तो इसी तरह बता रहे हैं कि भगवान की कथा को रियल टेस्ट कौन करेगा, हमने पहले भी पढ़ा था, जिसको भगवान से प्रीति हो गई है, फिर श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया जैसे जैसे करते जाएंगे, जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा इसी कथा से, तो सुनने का आग्रह बढ़ता जाएगा। मैं यहाँ भी भक्तों को देख रहा हूँ कैसे आप लोग 4:30 की क्लास में 4:15 में आ जाते हैं, तो कुछ आपका आग्रह है कहीं छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, ऐसे होता है। जैसे भक्त लोग जो नए भक्त होते हैं उनको प्रसाद का बहुत आग्रह होता है, कब 9 बजे क्लास खत्म होगी, पहुंचे आज क्या बना होगा, वो सोचते रहते हैं आज क्या बना होगा, आज क्या बना होगा। ऐसे ही रसज्ञ व्यक्ति सोचेगा अरे आज क्या बात होगी, आज क्या चर्चा होगी, क्या सुनेंगे। और ये ध्यान देना चाहिए कि इसको जब ये रस मिलता है तब आप अनुभव करोगे कि भौतिक वार्ता का रस कितना खराब है। इसीलिए भक्त लोग जब घर जाते हैं तो कहते हैं हम कुछ बात ही नहीं कर सकते इन लोगों से, कहने को तो ये भी इंसान है लेकिन हमसे कोई बात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो रसज्ञ नहीं है, वो तो पशुवत रहेंगे। आप उनको बोलेंगे कृष्ण के बारे में तो ये क्या बात कर रहे हो कृष्ण के बारे में, क्या आप लोग ऐसा अनुभव करते हैं? यस। तो इससे दिखाना चाहिए अगर आपको कथा में थोड़ा सा भी रस मिल रहा है, आग्रह हो रहा है, तो हमको भक्ति में प्रगति का ये मुख्य लक्षण है। हम प्रभुपाद यहां बोल रहे हैं रसज्ञ मतलब जिसने भगवान से प्रेम जागृत कर लिया, प्रेम जागृत कर पढ़ने में। प्रभुपाद मैं पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ रहा हूं, मैं हाईलाइट को देखता जा रहा हूं। प्रभुपाद जी पहली बात ये बोल रहे हैं कि जगत की कथाओं में और भगवान की लीला कथा में बहुत अंतर है। एक बार हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके घर में मैं हम लोग गए थे कार्यक्रम करने के लिए, तो हम लोग सुबह जप कर रहे थे और अखबार वाले ने अखबार फेंका, और वह अखबार उसने ऐसे फेंका जैसे बिल्कुल बिना ध्यान दिया फेंक दिया से, और जा करके वो शायद बारिश का पानी तो वहां गिरा, और फिर उसको उठा करके पढ़ रहे थे वो। तो मैंने उनको पूछा कि क्या ऐसे ही भगवत गीता आपको दी गई, क्या भगवत गीता भागवत भी इसी तरह से दी जाती है? और हम देख सकते हैं कि उस अखबार को सुबह भले पढ़ लें लेकिन शाम को हम नहीं पढ़ना चाहते, और कल तो फिर बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, अरे पढ़ रखा है क्या है बेटा। तो समझिए इस बात को, वह डेड मैटर है, वह है लिखा हुआ लेकिन इस जगत का वर्णन है तो वह डेड मैटर है, उसको जो जिसको वितरित कर रहा है वह भी उसकी अवहेलना पूर्वक वितरण कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो अखबार वाला है भी है वो उसको फेंक के जा रहा है, जैसे हम लोग डस्टबिन में प्लास्टिक बोतल फेंकते हैं। तो मैंने उनको समझाया जैसे हम लोग प्लास्टिक बोतल डस्टबिन में फेंकते हैं वैसे ही वो दुनिया की डस्ट हमारे ऊपर फेंक के जा रहा है, और हम लोग उसके पैसे देते हैं। तो सोच लेना चाहिए अगर आपके घर में अखबार है तो कृपया बंद कर दीजिए। देखिए ये बहुत खतरनाक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस जगत की जिज्ञासा हमें दोबारा जन्म लेने के लिए बाध्य कर देगी। जितना आवश्यक है उतना ही स्वीकार करना चाहिए, जगत के बारे में नहीं भी जानेंगे तो अच्छा ही है। ये मैं कई बार इस बात को रिपीट करूंगा, ये बात समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा सा जीवन बाकी है हमारा, पता नहीं कितना बाकी है ये भी पता नहीं, थोड़ा सा जीवन बाकी, जितना समय हो सके हम भगवान के बारे में श्रवण करें, एकदम हृदय ठंडा हो जाता है। आज मेरा अनुभव था, एक भक्त पे मैं गुस्सा था, तो खैर और वो भक्त मेरे सामने नहीं था तो गुस्सा प्रकट करने का मौका नहीं मिला, तो और महाराज की कथा चल रही थी तो मैं महाराज की कथा जैसे सुनने लगा कथा एकदम गुस्सा शांत हो गया, एकदम मैंने अनुभव किया इतना सुंदर कथा चल रही थी करके, कथा सुनने मात्र से हमारी मन की प्रवृत्तियां चेंज हो जाती। तो इसलिए भगवान की कथा समझने की शक्ति केवल मानव जीवन में है, उसमें ही शक्ति लगानी चाहिए। मैं फिर इस बात को बोलता हूं कि जैसे आईएएस की तैयारी के लोग कितनी मेहनत करते हैं बताइए, उतनी मेहनत अगर हम भागवत पढ़ने के लिए करें तो क्या हमारे परिवर्तन हो जाएगा और कितना आनंद है। तो प्रभुपाद इसी बात को बोल रहे हैं कि रामायण महाभारत जितने भी हैं आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको नए नए लगेंगे, और उसका एक और कारण भी है, जैसे आप पढ़ रहे हो हृदय में भगवान बड़े प्रसन्न होकर के आपके हृदय को शुद्ध कर रहे हैं, तो आपको हर बार उसमें कोई नए नए अर्थ समझ में आएंगे। पुस्तक तो वही है, शब्द वही हैं, लेकिन आपको अधिक अधिक समझ में आएगा। ठीक है। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि वही भगवद गीता भागवतम को अगर हम बार बार भी पाठ करें तो हमें नया नया प्रकाश प्राप्त होगा, वही श्लोक आपके हृदय में और धंस जाएगा, उससे और प्रेरणा प्राप्त होगी, ये बात प्रभुपाद जी कहते हैं। ओके, प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी बात इसमें कहे कि जिन लोगों ने इन विषयों को पढ़ने के लिए रुचि जागृत कर ली है, वैसे उसका एक प्रोसेस है, वो आगे बताया जाएगा कैसे रुचि जागृत कर लेती, फिर वे थकते नहीं, ये रहस्यमय है। कथा में रुचि नहीं है, लेकिन आपको ने जानबूझ करके रोज रोज नियम बना बना करके सुनते रहे, पढ़ते रहे, तो फिर अन्य वस्तुएं पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। वैसे मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूं, अगले हफ्ते हम लोग दैनिक जागरण जो इसमें मुख्य मुख्य इसके हाइलाइट्स हैं उसकी चर्चा करेंगे, आप लोग आना चाहेंगे? नहीं, दैनिक जागरण अखबार आता है उसमें जो मुख्य मुख्य पूरे हफ्ते में जो घटनाएं हुई आप लोग पढ़ के आइएगा, उसको हाईलाइट करें तो आप देखेंगे कि रुचि नहीं है। तो इस समय भी आप अनुभव कर रहे हो कि वह रुचि उधर की रुचि समाप्त हो रही है और इधर बढ़ती जा रही है। और अगर किसी को संस्कृत आए और टीका पढ़ना चालू कर दे तो इतना टेस्ट है भक्तों ने, क्योंकि वो तो और रसज्ञ है भाई। जैसे देखिए शुभा जो पिछले श्लोक में आया था उसका अर्थ अमाया है, वही तो हम समझ नहीं सकते अपनी शक्ति से, वो तो आचार्यगण हम लोग को पिला, मतलब बेबी बोतल होती उससे पिला पिला कर बोल रहे हैं, देखो ये इसका अर्थ है, ये इसका अर्थ है, ये इसका अर्थ है। तो यह विकास करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लग करके पढ़ना पड़ेगा, भले ही शुरुआत में रुचि ना हो तो भी। और फिर एक बार रुचि जागृत हो गई तो फिर आपको और कोई ग्रंथ अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद बाकी बातें प्रभुपाद जी ने, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि उत्तम श्लोक का अर्थ है कि इस साहित्य को पढ़ने से, भागवतम को पढ़ने से हमारा ज्ञान नष्ट होगा। और एक और बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, मायावादी लोग ये बोलते रहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आध्यात्मिक जीव हूँ, ये इसको बोलने से जीव की संतुष्टि नहीं होने वाली। अरे भाई तुम जीव तो हो, लेकिन मतलब आत्मा हो, शुद्ध चेतन वस्तु हो, लेकिन इसको बोलने मात्र से हम कोई सुखी नहीं होने वाले। ये बात आगे भी आएगी कि जीव माया में है, लेकिन केवल जान लेने मात्र से माया नहीं छोड़ेगी, क्योंकि माया भगवान की शक्ति से चल रही है। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, तब माया को तिरोहित करते हैं। जैसे रात्रि का अंधकार होता है, आपको मालूम चल गया कि रात्रि का अंधकार है, इसका अर्थ नहीं कि अंधकार को हम अपनी शक्ति से हटा सकते हैं, वह तो सूर्य ही हटा सकता है। मेक सेंस टू यू? ये मेरा अनुभूत है इस चीज को। आप चैतन्य चरितामृत को मैं पहले पढ़ता था, समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, भागवतम भी समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब हम बार बार पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं, तो फिर हमको समझ में आने लगता है, और समझने के साथ साथ अब उसका रस भी प्राप्त होने लगता है। आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे इस बात का। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि क्योंकि जो मायावादी लोग हैं, इनको अपनी साधना में कि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि चिल्लाने में सुख नहीं प्राप्त होता है, इसलिए फिर यह भागवतम की ओर मुड़ते हैं और उनकी मति इस प्रकार से शुद्ध हो सकती है। ठीक है, और प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि जिनको भागवतम की कथाओं को सुनने का मौका नहीं मिलता, वह लोग इस जगत के परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं। वो सोचते हैं इससे हम दूसरों का कल्याण करेंगे और उसके बाद भी वह संतुष्ट नहीं होते। एक बात सिद्धांत हमको समझ लेना चाहिए, बार बार इसको सुनना चाहिए, मछली पानी के बिना संतुष्ट नहीं रह सकती। तो ऐसे ही हरि कथा और हरि नाम के बिना हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हम लोग चिन्मय हैं, स्पिरिचुअल हैं, हमको स्पिरिचुअल टेस्ट चाहिए। मेक सेंस टू यू? भैया मैं कहूं कि अब आज प्रसादम में आप लोगों के लिए पत्थर का सूप है, पत्थर का सूप, उसमें घी भी डाल दिए तो पियेंगे आप लोग, खाएंगे पत्थर का सूप, ये क्या मतलब हुआ? हमारे लिए वो खाद्य वस्तु नहीं है। तो इसीलिए आत्मा के लिए श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का ज्ञान ही इसको, एक शब्द यूज करता हूं इंग्लिश का, एनलाइवन, एनलाइवन समझते हैं आप, सजीवित कर देना, कर देता है। आप देखिए कि ना तो मुझे इस कथा के लिए पैसे मिल रहे हैं, ना आपको मिल रहे हैं, फिर भी आप आते हैं, सुनते हैं। और जो अन्य हमने भौतिक पढ़ाई करी है उसका उद्देश्य यही है कि एक दिन इससे हमको पैसे मिलेगा। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका भी कारण यही है कि हमको पैसे मिलेंगे। अगर पैसे ना मिलें तो क्योंकि पढ़ाएगा भौतिक, तो हम समझ सकते हैं कि इससे किसी को कोई टेस्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, केवल व्यक्ति अपने जीवा जीवन को उपार्जन के लिए कर रहा है, करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुख प्राप्त नहीं होता। क्या आपने महसूस किया है कि कथा में नींद आती है? हाँ, वैसे नींद पूरी है और आप रसज्ञ हैं तो नहीं आती, लेकिन आप हम देख सकते हैं बलराम हॉल में प्रायः महाराज ने एक बार बोला, अरे भाई कथा शुरू होते ही तो मत सो। एक व्यक्ति कथा शुरू होते ही सोना चालू कर दिया, तो बोला महाराज यहाँ नहीं सोए तो कहाँ सोए और कहीं तो। और आप देखिए, दुनिया की वार्ता होते ही शोक होगा, मोह होगा या भय होगा, भगवान की वार्ता में ही हमें मन हमारा शांत होता है। ये प्रभाव कई बार लोग बोले, मेरी मौसी बोल रही थी, मैं जब करती हूँ जब जब करते 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 मेरे को नींद आती तो मैं सो जाती हूँ। तो ये दिखाता है कि हरे कृष्ण मंत्र जप करने से, भक्ति करने से आपका मन वाकई शांत होता है। ये दिव्य शब्द ध्वनि। तो हम इस श्लोक में क्या क्या सीख रहे हैं? हाँ, प्रभुपाद जी बात में लास्ट में बोलते हैं कि जो मायावाद दर्शन है ये लौकिक, ऐसे व्यक्ति जीव बोर हो जाता है। एक बहुत बड़े मायावादी थे, अद्वैतवादी थे, उनका नाम है मधुसूदन सरस्वती, और वृंदावन में आए तब उन्हें भगवान का अनुभव प्राप्त हुआ, वो भगवान के भक्त बन गए। फिर जब बनारस में गए और उनसे पूछा गया कि भाई कृष्ण कृष्ण करने लगे, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप तत्व के बारे को छोड़कर ये कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं क्या? तो कह रहे हैं कि कृष्ण को छोड़ के कोई और तत्व है ये मैं नहीं जानता। बड़ा फेमस उनका स्टेटमेंट है। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का लीला इतनी आकर्षक है कि जो पूरी तरह से ब्रह्म में स्थित है वह भी भगवान की लीला के प्रति आकृष्ट होते हैं। ये सब बातें आप आगे सीखोगे। ये प्रश्न उठाया जाएगा कि सुखदेव गोस्वामी तो बिल्कुल ब्रह्म में सुख में स्थित थे, तो यह भागवत को क्यों सुने? वैसे एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहता हूं, आगे आएगी। सूत गोस्वामी स्वयं बोलते हैं कि गंगा जी के तट पे, अर्थात पवित्र स्थल पे, पूरे राज्य को त्याग कर, पूरे विश्व के राजा थे परीक्षित महाराज, अन्न और जल भी त्याग कर वह कथा सुन रहे हैं। किनके बीच में? महर्षियों के बीच में, महान महान ऋषि के बीच में सुन रहे हैं। तो अब समझ लेना चाहिए कि मृत्यु के समय वह सब कुछ छोड़ दिए लेकिन कथा नहीं छोड़े। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना, कितना महत्वपूर्ण। महत्व देने से, जब देकर के कथा सुनेंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना? आप लोग कुछ महत्व दे रहे हैं तभी तो अपने बहुत सारे कार्यों को छोड़ करके यहां पे आए सुनने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। खैर, हमने इस श्लोक में क्या सीखा? ये जो ऋषिगण हैं वो ये कह रहे हैं कि अन्य लोग तृप्त हो सकते हैं, हम तो बड़े उत्सुक हैं कथा सुनने के लिए, तो आप हमको जरूर सुनाइए। हमें तृप्ति नहीं हो रही है क्योंकि कान कभी भरते नहीं और हम कथा के रस को जानते हैं, और इस रस से हमको स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पे स्वाद मिल रहा है। एक चीज बताइए, आप में से कितने लोगों को हरि नाम जप में कभी कभी सुख मिला है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या आपको अनुभव हुआ कि उसमें हर नाम के ऊपर आपको स्वाद मिल रहा था? याद आ रहा है? वही बातें बोल रहे हैं। जब आप अनुभव समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, और ये ऐसे होता है ना कि और करूं मैं और करूं, और देखिए वही होता है, 16 माला ऐसा कर लिया तो अब इसका मतलब नहीं कान भर गया है, अब 17वीं माला आप नहीं सुन सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? सोचिए अगर, और ये इसके लिए पॉइंट क्या है, अगर आपने तपस्या नहीं की होती, आपने नाम जप अच्छे से नहीं किया होता, तो क्या अनुभव प्राप्त होता? यही बात प्रभुपाद जी हम बोल रहे हैं। रुचि का मतलब है शुरुआत, रुचि उत्पन्न करने का मतलब है, रुचि नहीं है लेकिन साधुओं से सुन करके बहुत बढ़िया चीज है, इसको ग्रहण करो। नियमित रूप से ग्रहण करते 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 फिर उसकी रुचि आने लगती है। क्यों? हृदय से अविद्या नष्ट हो गई। मेरी बात समझ में आ रहा है? अनुभव है ना कि ये नाम कर रहे हैं और लगता है कि थोड़ा और करें, और हर शब्द पे कृष्ण राम के ऊपर रुचि प्राप्त होती है। ये शुरुआत में कभी कभी होता है, आगे जाकर के जब हम अनर्थ निवृत्ति को पार कर जाएंगे और शाश्वत समय में केवल एक बार करना है, एक बार हम लोग निष्ठा के स्तर पर आ गए तो फिर आपको हर दिन अच्छा लगेगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हमें तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है तो हम तपस्या को भूल जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? जब हमें तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है तो हम तपस्या को भूल जाते हैं, इसलिए तपस्या से घबराना नहीं चाहिए। नहीं समझ में आ रही बात? आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने कितनी तपस्या करी। जैसे आप किसी अपने प्रिय व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं और बहुत सारी यात्रा में कष्ट आए, लेकिन जब उससे मिल लिए तो सारी तपस्या भूल जाएंगे। और थोड़ा सा भी भागवत में कोई रुचि आने लग गई तो फिर ये तपस्या लगती ही नहीं है। इसीलिए लेकिन रुचि तभी आएगी जब नाम जप बढ़िया से करेंगे, जब हृदय शुद्ध होगा तब भगवान की कथा में समझ आए। और ये साइकिल है, भगवान की कथा को सुनते हैं तो नाम करने की प्रेरणा मिलती है, जब नाम करते हैं तो हृदय शुद्ध होता है तो कथा अच्छी लगती है, फिर कथा अच्छी लगती है तो क्या मिलता है, हरि नाम करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये साइकिल बन जाती, तो जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे समझ में आने लग जाएगा। और इसमें भौतिक योग्यता का कोई मतलब नहीं है, इसमें हृदय शुद्ध होना चाहिए तो आपको कथा समझ में आएगी। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के संग ऐसा हो रहा है कि जो सुनते हैं उस पर विचार होता है कि प्रभु जी ने ये बोला था, कि हमने ये सुना था, जब हाँ जब डिस्कशन करते हैं तो विचार करते हैं और रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो विचार आता है। ये नेक्स्ट स्टेप है। शुरुआत में हम सुनते हैं, हाँ सुन तो लिया, ये तो है श्रवण दशा, सुनना अच्छी बात है। उसके बाद होती वर्ण दशा, उसको ग्रहण करना, समझ रहे हैं? जैसे हमने सुना कि हमें कथा में रुचि उत्पन्न करनी है, अब सुन तो लिया, कोई लोग कहेंगे सुन, चलो चलो सुन लिया, हाँ सुनना क्या बोला था, उन्होंने बोला था कथा में रुचि उत्पन्न करने, ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। तो फिर उसने वर्ण नहीं किया, मेरी बात समझ रहे, स्वीकार नहीं किया, सुन तो लिया स्वीकार नहीं किया, ये दोनों में अंतर समझते हैं आप? हम दुनिया में बहुत सारी बातें बोलते हैं, हम स्वीकार नहीं करते। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आगे जाकर के एक टीका आई सिद्ध स्वामी जी की, यथा जीवस्य जन्मादि माया तथापि ईश्वरस्य जन्मादि माया, जिस प्रकार से जीव की जन्मादि माया है ऐसे ही ईश्वर की जन्मादि माया है। तो हमने सुन तो लिया लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर पाया, हमने कहा भगवान की तो जीव जन्मादि माया नहीं होता है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ा तो प्रभुपाद जी से बोलते हैं इसका अर्थ यह है कि भगवान का जो जन्मादि है वह भगवान की योग माया से होता है, वह लीला है उनकी। अब स्वीकार कर लिया, अंतर समझे आप, कि आप किसी को सुन रहे हो जरूरी नहीं स्वीकार कर रहे हो। तो बार बार जब हम भागवतम को सुनते हैं, ये उपदेशामृत में आप पढ़िएगा, तो हम पहले होती है श्रवण दशा, सुना उसके बाद उसको स्वीकार किया, फिर स्मरण, फिर आपको याद होने लगेगा। इसीलिए जो प्रभु जी ने बोला बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। प्रश्न किया, जैसे मेरे माँ ने प्रश्न किया, अरे भाई ये पहला प्रश्न कि सर्वश्रेष्ठ श्रेय क्या है और दूसरा प्रश्न कि शास्त्रों का सार क्या है, वह तो एक ही लग रहा है, दो प्रश्न क्यों है? तो मैंने उत्तर नहीं दिया, मैंने कहा करती रहो मनन आप, अभी सोचती रहो मैं आके उत्तर दूंगा। अब उनका मनन चालू हो रहा है, आप समझ रहे हैं? हम लोग ये मनन कर रहे थे कि अरे भाई ये प्रश्न और दूसरा प्रश्न तो एक ही है। पिछली बार मैंने एक कमेंट किया तो उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। इस्कॉन के भक्तों ने भी एक पुस्तक छापी है, बहुत अच्छी है, भागवत सुबोधिनी। तो उन्होंने क्या किया, श्रीधर स्वामी को फॉलो किया है। तो श्रीधर स्वामी जी 6 प्रश्नों को थोड़ा अलग रखते हैं, तो गलत नहीं था, वो उन्होंने उसको फॉलो किया। विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी 6 प्रश्नों को अलग रखते हैं, तो हम उसको उस तरह से रखते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन वह 6 प्रश्न मूलतः वही हैं, कृष्ण की लीला का वर्णन करें, पुरुष अवतार का, तो वह भी क्लैरिफाई हो गया। तो इस प्रकार के जब मनन होने लगा तो आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए, समझ आ रहा है? तो चित्त भगवान में जाने लगा तो फिर दोबारा कहां गर्भ में जाना पड़ेगा माँ के, ठीक है? बहुत बहुत और एक बार बस मेरी प्रार्थना है कि सब लोग को होने लग जाए तो बहुत, फिर वापस कोई आएगा नहीं, आपस हम लोग फिर वहीं मिलेंगे भगवत धाम में, ठीक है कि नहीं? मेरी नानी तो पहुंच गई, आप लोग को भी मिलेंगे जो आप लोग पहुंचेंगे, ठीक है कि नहीं? ओके, तो हम लोग अब इस संबंध में कुछ समझ रहे हैं, आप लोग समझ गए भगवान कृष्ण की लीला को सुनने का तृप्ति क्यों नहीं हो रही है। और आप ये सोचिए कि एक बार हृदय आपने शुद्ध कर लिया तो भागवतम तो हमेशा आपके पास है। हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ प्रैक्टिकल। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बहुत बीमार हैं, बिल्कुल बेड पे ही लेटे रहते हैं। तो उनके शिष्य ने पूछा, महाराज जी, और महाराज 1.5 महीने में पूरी भागवत के अनुवाद सुन लेते हैं, 1.5 महीने में पूरी भागवत 12 स्कंद नॉन स्टॉप सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। तो देखिए, एक तो कथा हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, सामने के जीवन का लक्षण भी होना चाहिए। तो मैं गया था मिलने के लिए, तो भक्त लोग बोले, महाराज जी से हमने पूछा, जिनके पर्सनल सेवक हैं, कि महाराज जी आप ये थक, आपको रेस्ट तो नहीं करना है, आप इतनी देर से कथा सुन रहे हो, आपको रेस्ट तो नहीं करना है? तो महाराज बोले, आपको आज तक समझ में नहीं आया कि मेरा रेस्ट क्या है? कथा सुनना ही मेरा रेस्ट है, आप सुनाते जाइए। नहीं नहीं उन, जो भागवत है उसका अनुवाद उनका शिष्य बोलता जाता है और वह सुनते रहते। तो अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हृदय से उनकी अविद्या नष्ट हो चुकी, भगवान में प्रेम हो गया, ये परम पुरुषार्थ है। महाप्रभु भी इसी प्रकार से दिन में कीर्तन करते, भक्तों के संकीर्तन करते, फिर रात में रात भर कथा चर्चा होती रहती थी, ऐसा रहता। और ये सबके संग होगा, इस पे हम सबका अधिकार है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये सब बातें भी आगे आएंगी। तस्यैव हेतो प्रयतेतो कवुदो, मुझे कथा में रुचि नहीं है, मुझे ये प्राप्त करनी है, मुझे नाम में रुचि नहीं है, ये मेरा अधिकार है मुझे प्राप्त करनी। इसी के लिए भगवान से भीख मांगना चाहिए, भगवान प्रेम दीजिए, अपना प्रेम दीजिए। ठीक है, मैं फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं, जब हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है, ये जितनी मात्रा में प्रेम होता है उतनी मात्रा में भक्ति की कोई भी क्रिया आपको सुख देती। ये बात समझ में आती? कई बार मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां भी प्रभुपाद इस बात को समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं, पद पद पर साधु अति साधु, जितना स्वाद है उससे और अधिक साधु बढ़ता जाता है। ऐसा खाने में होता है क्या? आप देखिए, खाने में इंग्लिश में कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। पहला खाएंगे रसगुल्ला कहेंगे बहुत अच्छा, दूसरा खाएंगे हाँ अच्छा, फिर तीसरा चौथा पे कहेंगे अरे मारोगे क्या। लेकिन कथा में इस प्रकार से नहीं होता है, जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा उतना हमारा आग्रह बढ़ता चला जाएगा। हाँ हाँ, डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार से जो है ये कथा में नहीं होता है। तो इसके लिए मानव जीवन है और इसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं।